ओम अज्ञानतिमिरांधस्यज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज अध्याय 10 चैप्टर 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य, इसको हम डिस्कस करेंगे। इस अध्याय का टेक्निकली नाम है विभूति योग। भगवान के अवतार और भगवान की विभूतियों में कुछ अंतर है। अवतार का मतलब है कि जब भगवान स्वयं इस धरा पे आते हैं अवतार लेके, और विभूति का मतलब होता है कि भगवान कभी अगर किसी पर्टिकुलर वस्तु में या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में अपनी शक्ति को इन्वेस्ट करते हैं तो उसको विभूति बोला जाता है। विभूति मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। तो ये भगवान का विभूति योग है। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से इस संसार की जो सबसे अच्छी वस्तुएं हैं, बेस्ट वस्तुएं हैं, बेस्ट व्यक्ति हैं या बेस्ट जीव हैं या बेस्ट देवता हैं, वो सभी भगवान के प्रतिनिधित्व करते हैं। ये इस अध्याय में बताया गया है। और इस अध्याय में विभूति बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि भगवान ऑलरेडी 9वें अध्याय में शुद्ध भक्ति को बता चुके हैं, मन मना भव मद भक्त, जो कि हमने कल डिस्कस किया था कि मेरे भक्त बनो, मेरा चिंतन करो, इस तरह आप मुझसे युक्त रहोगे। तो ये भगवान 9वें अध्याय में बता चुके हैं। अभी भक्त के हृदय में अपने प्रति और भक्ति जनरेट करने के लिए भगवान अपने वैभव को बताते हैं, अपनी ऑप्युलेंस को भगवान बताते हैं, जिससे कि जब भक्त ऑलरेडी भगवान को प्रेम कर रहा है उसको पता चलता है कि भगवान कितने बड़े हैं, कितने महान हैं, तो उसका जो प्रेम है वो और बढ़ जाता है भगवान के लिए। तो भक्त का अपने प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए इस अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्यों को बताते हैं। कोई अध्याय इससे संबंधित है। 7वें अध्याय में भगवान ने अपनी एनर्जीज को बताया था, अपनी शक्तियों को बताया था, और 9वें अध्याय में भगवान ने अपनी शक्तियों को डिस्क्राइब करके उसको इस तरह से डिस्क्राइब किया था कि जिससे वो शक्तियाँ भक्त को भक्ति को बढ़ाने में मदद करें। इसलिए 10वें अध्याय का प्रारंभ जब भगवान कर रहे हैं तो 10वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान बता रहे हैं, भूय एव महाबाहु सुणु मे परमं वचः। हे महाबाहु, और आगे सुनो। और आगे सुनो का मतलब कि 9वें अध्याय में तुमने जो सुना है उसके आगे और सुनो, लिसन अगेन, जिससे कि मेरे बारे में और वैभव सुनने के कारण तुम और मुझे आसानी से प्रेम कर सकते हो, अपने भक्ति को और डेवलप कर सकते हो। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन की क्वालिफिकेशन फिर से बता रहे हैं। एक क्वालिफिकेशन हमने देखी थी जो भगवान ने 7वें अध्याय में बताई थी, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। और उसके आगे भगवान बताते भी थे कि चूँकि अर्जुन मुझसे ईर्ष्यालु नहीं है, इसलिए मैं अर्जुन को ये ज्ञान दे रहा हूँ। और इसमें भगवान बता रहे हैं, यत्ते हम प्रिय माणाय, चूँकि तुम मेरे बहुत प्रिय सखा हो, इसलिए तुम्हारे लाभ के लिए मैं ऐसा ज्ञान दूंगा जो कि अभी तक मैंने जो बताया है उससे ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। ये इस तरह से बता रहे हैं कि 7वां और 9वां अध्याय भगवान ने जो ज्ञान बताया है अपनी विभूतियों के बारे में, उसी विभूतियों को और ज़्यादा डिटेल में बताने से भक्ति और ज़्यादा डेवलप होती है। तो 10वें अध्याय में भगवान अपने कार्यों को बताते हैं, अपने ऐश्वर्य को बताते हैं, जिससे कि भक्ति की जो लता है वो भक्त के हृदय में और सुदृढ़ हो जाए। तो भगवान बता रहे हैं, हे अर्जुन आगे सुनो, मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। ज्यों ज्यों कोई व्यक्ति भगवान के विषय में सुनता है त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। और मनुष्यों को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करें, इससे उनकी भक्ति लगातार बढ़ती रहेगी। इसके बाद दूसरे नंबर का जो श्लोक है, वो श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि भगवान पूरे संसार के ओरिजिन है। वास्तविकता में 10वें अध्याय में पहले से 7वें श्लोक तक यही सेक्शन है कि भगवान कृष्ण सभी वस्तुओं के स्तोत्र हैं, सब कुछ उनसे निकला हुआ है। तो दूसरे श्लोक में स्पेसिफिकली भगवान बता रहे हैं कि वो कैसे कैसे उनको समझना कोई इतना आसान नहीं है। न मे विदु सुरगणा, देवता लोग भी मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते हैं, महर्षि लोग भी मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते हैं, और अहम आदिर ही देवानाम, मैं सारे देवताओं में आदि देवता हूँ और सारे महर्षियों का भी मैं कारण स्वरूप हूँ। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। इसी तरह से भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान के बारे में बताया भी था कि अनादिर आदिर गोविंद, भगवान गोविंद सभी के स्तोत्र हैं और उनका कोई स्तोत्र नहीं है, अनादिर आदि। तो दुनिया के बड़े बड़े देवता चाहे ब्रह्मा हो शंकर हो भगवान को नहीं समझ पाते हैं। ऐसे एक श्लोक आता है, एक श्रुति वाक्य या कहीं पे आता है, यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतस्तुवंति दिव्यैस्तवै वेदै सांग पदक्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यन्तं न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। इस श्लोक में आता है कि भगवान भगवान इस तरह से हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता, ब्रह्मा वरुण रुद्र मरुत इंद्र ये सभी हमेशा दिव्य तरीके से भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, और सारे के सारे वेद भी मिलकर भगवान की प्रार्थना करते हैं। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में 87 नंबर श्लोक 87 नंबर चैप्टर में इस तरह से पूरे चैप्टर में बताया गया है कि किस प्रकार से चारों वेद भगवान की प्रार्थनाएं करते हैं। और ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, संसार के महान महान योगी जो हैं, जब वो ध्यान में बैठते हैं तो वो भगवान को अपने ध्यान में दर्शन करते हैं। इस प्रकार से बताया जाता है, यस्यं तं न विदु सुरा सुरगणा। तो देवता असुर और ब्रह्मा शिव ये भी भगवान को नहीं जान पाते हैं पूरी तरह से, जब तक भगवान स्वयं नहीं उनको कृपा करके अपने बारे में रिवील करें तब तक वो नहीं जान पाते हैं। तो यहाँ पे भगवान दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि किस प्रकार से मैं सबका आदि हूँ परंतु मेरा आदि कोई नहीं है, और इस प्रकार से जो मुझे जानता है उसके साथ क्या होता है, वो व्यक्ति असम्मूढ़ है, वो व्यक्ति संसार में कभी भी मोहित नहीं होता है, और सर्व पापे विमुच्यते, सारे पाप खत्म हो जाते हैं। भगवान के बारे में जानना इतना शुभ है कि अगर कोई व्यक्ति केवल भगवान के बारे में जान जाता है, किस क्या क्या जानता है भगवान के बारे में, वो भगवान बता रहे हैं, जो मुझे अजन्म अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, यो माम अजम अनादिम च, जो मुझे ये जानता है कि मैं अजह हूँ, मेरा जन्म नहीं होता है, मेरा कोई भी स्तोत्र नहीं है, आदि नहीं है, और मैं सभी लोगों का स्वामी हूँ। ये तीन चीज़ें हमने 5वें अध्याय में भी ये देखी थी, अगर आपको याद होगा भगवान बताते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां। उसमें भगवान बताते हैं कि जो मुझे परमेश्वर सभी यज्ञों का स्वामी, सभी लोगों का राजा मतलब स्तोत्र, और सभी अपना सबसे अच्छा मित्र मानते हैं, वो शांति को प्राप्त करते हैं। यहाँ भी भगवान ऑलमोस्ट उस तरह से बता रहे हैं कि ये भगवत ज्ञान को जो जानते हैं कि जो मुझे अजन्मा अनादि और सभी लोकों के स्वामी के रूप में जानता है। अजन्मा मतलब मेरा कभी जन्म नहीं होता है, अनादि मतलब मेरा कोई स्तोत्र नहीं है, मैं सभी का स्तोत्र हूँ और मैं सभी का स्वामी हूँ। जो इस तरह से जानता है वो जानने वाला व्यक्ति कभी भी इल्यूजन को प्राप्त नहीं करता है, मोहित नहीं होता है संसार में, और हमेशा सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान ने यहाँ अपने आप को अजन्मा कहा है। द्वितीय अध्याय में भी एक जगह अजन्मा शब्द आता है जो आत्मा के लिए आता है, तो ये अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि भगवान और आत्मा गुणात्मक रूप से एक दूसरे के समान है, गुणात्मक समानता है दोनों के अंदर। जैसे समुद्र का पानी में चाहे एक बूंद पानी लें चाहे पूरे समुद्र लें, गुणात्मक दोनों समान होते हैं। तो उस तरह से भगवान बता रहे हैं, आत्मा का भी जन्म नहीं होता, भगवान का भी जन्म नहीं होता है, परंतु भगवान कभी भी भौतिक शरीर धारण नहीं करते हैं। आत्मा यह है, आत्मा का परिमाण कम होने के कारण आत्मा भौतिक शरीर धारण करता है, परंतु भगवान भौतिक शरीर धारण नहीं करते। ये दोनों के बीच में अंतर होता है। इसके बाद भगवान बताते हैं चौथे श्लोक में कि किस प्रकार से संसार के सारे गुण भगवान से निकल के आते हैं। संसार में जो भी वस्तुएं हम देखते हैं, जितने भी जीवों के अंदर गुण दिखाई देते हैं, वो सारे गुण भगवान से निकल के आते हैं। चाहे वो गुण अच्छे हों चाहे खराब हों, ये सारे गुण भगवान से निकल के आते हैं। और सारे गुणों का डिटेल एनालिसिस किया है इन दो अध्याय दो श्लोकों के अंदर। तो इस तरह से सातवें श्लोक तक हम देखते हैं कि भगवान किस प्रकार से हर वस्तुओं के ओरिजिन हैं। कौन कौन से गुण यहाँ पे बताए गए वो हम जस्ट देख सकते हैं। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का नियंत्रण, मन का नियंत्रण, सुख तथा दुख, जन्म तथा मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश। जीवों के ये सारे गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न हैं। और इसके तात्पर्य में ये बताया गया है कि ये सारे गुण क्या क्या कहलाते हैं। बहुत अच्छा तात्पर्य है। पूरा तात्पर्य हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, पर तात्पर्य के कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट श्लोक आता है। बुद्धि का मतलब होता है वस्तुओं को ठीक ढंग से समझने की कोशिश करना, ठीक ढंग से समझने में समर्थ होना, द पावर टू एनालाइज थिंग्स इन द प्रॉपर पर्सपेक्टिव, इसको बुद्धि बोला जाता है। ज्ञान का मतलब होता है, एक ज्ञान का मतलब होता है आत्मा और शरीर के बीच में अंतर जानना। जैसे एक बोलते हैं एमएससी की डिग्री, एमएससी जानते हैं मास्टर ऑफ साइंस बोलते हैं, परंतु एमएससी का मतलब मास्टर ऑफ साइंस नहीं होता है। एमएससी का मतलब होता है मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ, इसको एमएससी बोला जाता है। एम एम फॉर मैटर, एस फॉर स्पिरिट, सी फॉर कंट्रोलर ऑफ बोथ, मतलब आत्मा, पदार्थ और भगवान के बारे में जानने को एमएससी बोला जाता है, ज्ञान बोला जाता है। मॉडर्न एकेडमिक एजुकेशन जो होती हैं वो केवल मैटर के बारे में बताते हैं, कभी भी आध्यात्मिक तत्व नहीं बताते हैं, स्पिरिट के बारे में नहीं बताते हैं। ये इसलिए ये पूरी तरह से पूर्ण नहीं है। जो एकेडमिक यूनिवर्सिटी का एजुकेशन है वो पूरी तरह से पूर्ण नहीं है। जैसे फिजिक्स को भौतिक विज्ञान बोलते हैं, नाम से ही पता चलता है कि इस संसार का विज्ञान है, तो ये आध्यात्मिक तत्व नहीं है, इसलिए पूर्ण नहीं कहलाते हैं। इसके बाद सम्मोह, मतलब सम्मोह का मतलब होता है कि संशय और मोह से मुक्ति। इस संसार में मोह आता है जब हम वस्तुओं को प्रॉपर पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाते हैं। तो मोह और संशय से मुक्ति के लिए, केवल ये मोह संशय से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब हम दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में एक्सेप्ट करें, उसके आधार पे हम कार्य करना चालू करें। भगवत ज्ञान को एक्सेप्ट स्वीकार करना और उसको जीवन में अप्लाई करना चालू करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे संदेह और मोह खत्म होने लगता है। हर कोई भी चीज़ को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अध्यात्म में भी हमें अपना दिमाग लगाना है। जैसे कोई भी आके कुछ भी बोले तो उसको डायरेक्टली नहीं मानना है, हमें अपना दिमाग भी लगाना है। भारत में लोग दिमाग नहीं लगाते हैं अध्यात्म के फील्ड में, इसलिए बहुत सारे लोग ठगे जाते हैं गलत गलत बाबा जी इन सब के द्वारा। तो इस तरह से अगर हम दिव्य ज्ञान को अप्लाई करते हैं और सुनते हैं, प्रामाणिक गुरु से सुनते हैं, तो धीरे धीरे ये सब मोह खत्म हो जाता है। इसके बाद क्षमा, क्षमा को बोला जाता है फॉरगिविंग, दूसरे को माफ़ करना। दूसरे की कुछ छोटी गलतियाँ हो तो उनको माफ़ कर सकते हैं। और क्षमा का एक और लक्षण है सहन करना। अगर कोई हमारे लिए कुछ इंसल्ट करता है तो उसके लिए हमें ज़्यादा ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, या उसको सहन करना सीखना चाहिए। टॉलरेंस एक्चुअली बहुत बड़ी क्वालिटी है, सभी लोग ये नहीं कर पाते हैं, परंतु अगर कोई व्यक्ति सहनशील होता है तो उसके लिए बहुत बड़ा ऑप्यूलेंस होता है सहनशीलता। इसके बाद आता है सत्य। सत्य मतलब जिस प्रकार से जो फैक्ट बोले गए हैं उसको उसी तरह से प्रेजेंट करना, इसको सत्यता बोला जाता है। और सत्यता का एक और मतलब होता है कि हमारी वाणी और हमारे व्यवहार में समानता होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। उसके बाद दम और समः। दमः का मतलब इंद्रियों को नियंत्रित करना, सम का मतलब मन को नियंत्रित करना। सुख और दुख को इस प्रकार से समझना कि कौन सा चीज़ भक्ति के लिए ज़्यादा अच्छा है, सुख भक्ति के लिए ज़्यादा अच्छा है कि दुख भक्ति के लिए ज़्यादा अच्छा है, इस प्रकार से इन दोनों को समझ सकते हैं। भवो भावो, भय और अभय, भय कैसे आता है? एक तो भय का डेफिनेशन श्रीमद् भागवत में आता है कि एक बच्चा तब तक भयभीत नहीं होता है जब तक वो अपने पिता की प्रॉपर्टी के अंदर होता है। जैसे ही पिता की प्रॉपर्टी से बाहर जाता है उसको लगता है कि यहाँ पे कोई और भी कंट्रोलर है, तो उसको डर लगता है। तो जब हमें लगता है, जब हम भगवान को नहीं जानते हैं तो हमें नेचुरली भय लगता है, परंतु अगर हम भगवान के शरण ले चुके हैं तो पूरा हमें पता है कि पूरा संसार भगवान की प्रॉपर्टी है, भगवान पूरे संसार के मालिक हैं, तो फिर हम अभय हो जाते हैं। और फ्यूचर के बारे में सोचने से और वर्तमान में डूब जाने से हमें भय आता है। इसलिए अभय केवल तभी पॉसिबल है जब हम अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त हों, और आध्यात्मिक स्वरूप में जो कार्य करना चाहिए वो कार्य करें, मतलब भगवान की भक्ति करें और इस तरीके की श्रद्धा रखें कि हम भगवत धाम निश्चित रूप से चले जाएंगे। इसके बाद आता है अहिंसा। अहिंसा का मतलब, अहिंसा का एक सामान्य मतलब होता है लोगों को परेशान हार्म नहीं पहुंचाना, दुख नहीं पहुंचाना, और दूसरा एक मतलब होता है कि लोगों को कृष्ण भक्ति प्रदान करना, लोगों की आध्यात्मिक कृपा करना उनके ऊपर। उसके बाद होता है समानता। समानता हम सभी जानते हैं, आसक्ति और अनासक्ति, अटैचमेंट और एवर्जन, मतलब एक एक चीज़ से आसक्ति, एक चीज़ से घृणा, इससे दूर रहना, सुख दुख को समान समझना, भौतिक संसार में जो वस्तु है उसको वैराग्य तरीके से स्वीकार करना और भगवान भक्ति में ध्यान देना। इसके बाद आता है तुष्टि। तुष्टि का मतलब होता है कि संसार में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा करने की इच्छा नहीं करना है, क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके कई बार अपनी क्लासेस में कि अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट संतुष्ट नहीं होता है तो उसको संसार की पूरी दौलत मिलने के बाद भी उसके अंदर संतुष्टि नहीं आती है। इसलिए संतुष्टि बहुत बड़ी क्वालिटी है। हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी मेहनत करेंगे परंतु इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे कि हमारा आध्यात्मिक जीवन खतरे में आ जाए या आध्यात्मिक जीवन का लॉस हो। तो तुष्टि, तप, आध्यात्मिक जीवन के लिए तप बहुत जरूरी है। सामान्यतः तप सभी लोग करते हैं, भौतिक संसार में भी लोग तपस्या करते हैं। इतनी पैसे कमाना कम कठिन बात नहीं है, एक्चुअली पैसे कमाना आसान बात नहीं है, सॉरी। कि पैसे कमाने के लिए मैंने देखा लोग 100 100 किलोमीटर, 200 200 किलोमीटर हर दिन ट्रैवल करते हैं। यहाँ के बहुत सारे लोग अंकलेश्वर में जॉब करते हैं, एक एक 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना, और कई लोग यहाँ से दाहोद अप डाउन करते हैं, पूना से मुंबई अप डाउन करते हैं और फिर जॉब करते हैं। तो पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। तपस्या लोग तब भी करते हैं परंतु वो तपस्या किस लिए है? भौतिक पैसे कमाने के लिए, जबकि आध्यात्मिक जीवन में तपस्या होती है भगवान को संतुष्ट करने के लिए। तो इस तरह से आध्यात्मिक जीवन में हमें तपस्या की कोशिश करना चाहिए। दान, भक्ति का दान, धन का दान, गृहस्थ लोगों को जो भगवान की भक्ति के लिए अपने इनकम में से कुछ परसेंटेज देना चाहिए। और उसके बाद यशः, भगवान के भक्त, भगवान के भक्त की प्रशंसा करनी चाहिए और भगवान को ग्लोरीज देना चाहिए। ये सारे गुण जो हैं ये भगवान बता रहे हैं कि मत्त एव पृथग्विधा, मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। इसके बाद छठवें श्लोक में और सातवें श्लोक में, छठवें श्लोक में विशेष रूप से भगवान इस तरह से बता रहे हैं कि 25 प्रकार के ऋषि मुनि, मेन ऋषि मुनि हैं जिनसे पूरा संसार निकला है। ये कौन कौन है? महर्षया सप्तपूर्वे, सप्तऋषि, और चार सप्तऋषि भी ब्रह्मा के पुत्र हैं, और ब्रह्मा के चार सबसे पहले पुत्र, चार कुमार, तो टोटल 11, और मनु 14, मनु तो 14 प्लस 11, टोटल 25 ऋषि मुनि हैं जो कि इस संसार में पूरी प्रजा को जन्म देते हैं। और भगवान बता रहे हैं कि ये सभी भी मद्भावा मानसा जाता, ये सारे के सारे ऋषि मुनि मुझसे उत्पन्न हुए हैं, और जब तक ये ऋषि मुनि मेरे बारे में तभी जान पाते हैं जब मैं उनको कृपा करता हूँ। तो जब ये वाला श्लोक और इसके बाद वाला श्लोक भगवान बता रहे हैं, बाद वाले अगले श्लोक में भगवान बताते हैं एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। इस प्रकार से संसार में मेरी जो विभूतियों को जानता है, मेरे ऐश्वर्य और मेरे वैभव को जानता है, वो मेरी अनन्य भक्ति में लग जाता है। इस तरह से जब भगवान बताते हैं कि संसार में जो मेरे सारे वैभव को जानता है वो मेरी भक्ति में लग जाता है, अनन्य भक्ति में, शुद्ध भक्ति में लग जाता है। तो जब अर्जुन ये सुनते हैं तो अर्जुन को भी इच्छा होती है भगवान के वैभव को जानने के बारे में, क्योंकि भगवान ने बताया मेरे वैभव जानने से अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। तो अर्जुन को भी इच्छा होती है कि भगवान के वैभव के बारे में सुने वो। तो अर्जुन इस चीज़ को ध्यान रखते हैं, और अभी कुछ श्लोकों बाद अर्जुन फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मुझे अपने वैभव के बारे में बताइए। और इसके बाद 7-8 से लेके 11 तक भगवत गीता का चार सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक हैं, जिनको चतुश्लोकी भगवत गीता बोला जाता है। ये चार श्लोक जो हैं, 10-10 10वें अध्याय के 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक भगवत गीता, पूरी की पूरी भगवत गीता को चार श्लोकों में समराइज कर देते हैं। अगर भगवत गीता को हमें चार श्लोकों में सुनाना है, तो ये जो श्लोक हैं, ये हमें भगवत गीता के बारे में बताते हैं। इसमें से 8 नंबर का श्लोक और 9 नंबर का श्लोक भगवान के वैभव को बताता है, और 10 नंबर और 11 नंबर के श्लोक में भगवान बताते हैं कि कैसे वो अपने भक्तों की मदद करते हैं, रेसिप्रोकेट कैसे करते हैं। 2 श्लोकों में भगवान का प्रेम बता भक्तों का प्रेम बताते हैं, और बाकी 2 श्लोकों में भगवान उनकी कैसे मदद करते हैं, कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये 4 श्लोक पूरी भगवद गीता में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक माने जाते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 4 श्लोक याद करें। ये चतुर्श्लोकी गीता बोला जाता है। अगर कोई पूछे कि भगवद गीता को 4 श्लोकों में समझाओ, तो इन 4 श्लोकों में भगवद गीता पूरा का पूरा समझाया जाता है। पहला श्लोक जो है 8वां श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वित। भगवान ने इन इन जनरल अपने सारे के सारे वैभव इस श्लोक में बता दिए हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो, समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का मूल कारण मैं हूँ, मैं आध्यात्मिक और भौतिक जगहों का मूल कारण हूँ। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ निकलता है, तो मैं सभी सभी का मूल कारण हूँ, मुझसे सब कुछ निकलता है। इति मत्वा भजन्ते माम, इस प्रकार से जो जानता है वो मेरी भजन करता है, मेरी प्रेम भक्ति में लगा रहता है, और बुधा भाव समन्वित, अपने पूरे भाव से वो मुझे सेवा करता है, मेरी पूजा में तत्पर होता है। तो ये इन जनरल भगवान के सारे ऐश्वर्य इस स्टेटमेंट में आ जाते हैं कि मैं सभी सभी में व्याप्त हूँ, सब कुछ मुझसे निकला है। इस तरह से जान के जो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। कई उपनिषद में भी इस तरह से श्लोक आते हैं जो बताते हैं कि भगवान कृष्ण ही सभी वस सभी के कारण हैं। जैसे एक श्लोक आता है इसमें, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश से गापयति स्म कृष्ण। जिन्होंने ब्रह्मा को पहले ज्ञान दिया था, और जिन्होंने वेदों को लिखा है, वेदों का ज्ञान का प्रचार किया है, वेदों को बनाया है, वो कृष्ण स्वयं है। इस तरह से कई उपनिषदों में लिखा है, वेदों में भी ये कथन लिखा है, ब्रह्मणो देवकी पुत्र, पर ब्रह्म जो है वो भगवान कृष्ण है, जो देवकी के पुत्र हैं। नारायण परा परो देवस तस्माद जातस चतुर्मुखा तस्माद वृद्धो भवेद देव सचा सर्वज्ञताम भता। नारायण भगवान है, उनके उनमें से ब्रह्मा निकलते हैं, और ब्रह्मा से शंकर जी निकलते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्त्रोत्र हैं। तो ये श्लोक याद करना बहुत जरूरी है। इसमें भगवान के सारे वैभव इन जनरल बताए जाते हैं। और इसके बाद अगले श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान की भक्त भगवान की कैसे भक्ति करते हैं। तो इसमें है, मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। मेरे भक्त मच्चित्ता, मेरे भक्तों के विचार मुझ में रहते हैं, विचार मुझ में वास करते हैं, इस तरह से भगवान बता रहे हैं। मद्गत प्राण, मद्गत प्राण मतलब उन्होंने अपने प्राण मुझे दे दिए हैं। मद्गत प्राण का मतलब होता है जिसके बिना वो जी नहीं सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अन्नगत प्राण का मतलब होता है कि जैसे कलयुग में लोग अन्न के बिना नहीं जी पाते हैं, क्योंकि उनके प्राण अन्न से शोभित होते हैं। अन्नगत प्राण मतलब अन्न हमारा प्राण है, अगर किसी को अन्न नहीं दिया जाए तो व्यक्ति कमजोर होने लगता है। तो अन्नगत प्राण मतलब अन्न हमारे प्राण है। तो कृष्णगत प्राण का क्या मतलब होगा, कृष्ण हमारे प्राण है। वही भगवान इसमें लिख रहे हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राण, मेरे भक्त जो हैं उनका प्राण मैं हूँ, मेरे भक्त मेरे बिना जी नहीं सकते, उनके विचार मुझ में डूबे हुए हैं। मच्चित्ता का मतलब होता है मन मनाओ, मच्चित्ता दो थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि मन के दो हिस्से होते हैं। चित्त मतलब होता है जो मन का सबकॉन्सियस माइंड है, तो चित्त ज़्यादा डीप होता है, चित्त के अंदर बहुत सारी पुरानी पुरानी घटनाएं होती हैं। तो मन जो है सबसे ऊपर, मन 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 से भी ज़्यादा डीप होता है चित्त। तो भगवान बोलते हैं मन में भी मुझे आश्रय दो और चित्त में भी मुझे आश्रय दो। मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम और कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति। इस प्रकार से मेरे भक्त जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो हमेशा मेरे बारे में बात करते हैं, और जब वो मेरे बारे में बात करते हैं तो दोनों तुष्यंति च रमंति च, दोनों बहुत संतुष्टि का अनुभव करते हैं, और दोनों हृदय में बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित हैं, वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हैं। बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। इस प्रकार हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए, क्योंकि भक्तों के संग में रहने से हम कृष्ण के बारे में बातचीत करते हैं, जिससे हमें भी संतोष मिलता है और हमें भी आनंद का अनुभव होता है। जिस प्रकार हमारी जो भक्ति है, भक्ति एक बीज के जैसी है, अगर इस भक्ति को जीव के हृदय में लगाया जाए, अंकुरित किया जाए और फिर उसमें पानी डाला जाए, पानी मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और श्रवण अगर डाला जाए, तो धीरे धीरे बीज अंकुरित होता है और फिर लगातार इसमें अगर सिंचन चलता रहता है तो वृक्ष का बीज फलता है और ये पौधा बढ़ता जाता है। ये पौधा इस संसार को पार करके आध्यात्मिक संसार में जाता है, आध्यात्मिक संसार में भी जाके गोलोक वृंदावन में जाके भगवान के चरणों में जाके पौधा आश्रय लेता है, फिर वहाँ से कृष्ण प्रेम के फल पैदा करता है और जो भक्त यहाँ पे है वो इस कृष्ण प्रेम के फल का आस्वादन करता है। तो इस प्रकार से जो भक्त कृष्ण प्रेम का आस्वादन करते हैं, जब वो दूसरे भक्तों से मिलते हैं तो वो भी कृष्ण के बारे में बताते हैं, तो दोनों संतुष्ट होते हैं। जैसे बहुत महान महान भक्त भी एक दूसरे से कृष्ण की बात करते थे, जैसे आपने एक फोटो देखा होगा जिसमें वृंदावन में 6 के 6 गोस्वामी एक साथ बैठे रहते हैं, एक जगह बैठ के संगोष्ठी करते हैं मदन मोहन टेम्पल के पास में, तो वो सभी के सभी शुद्ध भक्त हैं परंतु तब भी एक दूसरे से मिलके भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त के प्राण भगवान में लगे होते हैं, अगर भगवान के बारे में बात नहीं करेंगे तो जीवित नहीं रह सकते, इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं भगवान से। तो ऐसे लोग अगर भगवान से इतना प्रेम करते हैं तो भगवान उनको कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे, ये 10वें श्लोक में आता है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। तो अगर कोई भगवान की सेवा में लगातार लगा रहता है तो फिर भगवान की जिम्मेदारी है कि उसके हृदय में ज्ञान प्रदान करते हैं और उस ज्ञान के द्वारा भगवान उस भक्त को अपने पास लेके आते हैं, ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वो भक्त मेरे पास तक आ जाता है। तो यहाँ पे जो बुद्धि योग लिखा है, बुद्धि योग का मतलब है भक्ति योग, या दूसरे अध्याय में भी बुद्धि योग आता है, बुद्धि योग बुद्धि युक्तो जहाती है उभव सुकृत दुष्कृत, इस तरह से आता है। तो बुद्धि योग बहुत महत्वपूर्ण है, ये बुद्धि योग क्या कहलाता है, भक्ति योग, क्योंकि ये बुद्धि योग का मतलब है ऐसा योग जिससे भगवान के पास जाया जा सकता है, और भगवान इसी प्रकार का योग देते हैं, मतलब भगवान स्वयं भक्ति का ज्ञान भक्तों को प्रदान करते हैं अगर कोई भक्त भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करता है और उनका भजन करता है, तो भगवान उसको खुद ही भक्ति का ज्ञान दे के उसको अपने पास तक लेके आते हैं। और कैसे स्वयं भगवान उसके हृदय में जाके अज्ञान जो है उस अज्ञान रूपी अंधकार को खत्म करते हैं और उसके हृदय को ज्ञान के द्वीप से प्रकाशित करते हैं। मैं उन पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमय दीपक के द्वारा अज्ञान के अंधकार को दूर करता हूँ। हमारे हृदय में जो तमोगुण रजोगुण है और अज्ञान है, भगवान खुद हृदय में प्रवेश करते हैं और हृदय में प्रवेश करके ज्ञान के दीपक के द्वारा उस अज्ञान को खत्म करते हैं। ये भगवान का रेसिप्रोकेशन है। सबसे पहले बुद्धि योग देते हैं और बुद्धि योग जो है वो अग्नि के समान, दीपक के समान होता है। जब बुद्धि योग व्यक्ति प्राप्त करता है तो उससे उसका जो अज्ञान है वो खत्म हो जाता है, और पूरा अज्ञान जब खत्म हो जाता है तो वो भक्ति में डूब के फिर भगवान के पास चला जाता है। जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वो पर्याप्त शिक्षित ना हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते हैं, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल से आच्छादित हो जाता है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है तो यह मल तुरंत दूर हो जाता है और उस भक्त को शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः उसको सब कुछ प्रदान करते हैं। यही भगवद गीता का सार है। तो ये 4 श्लोक में इस तरह से बताया है, एक में भगवान अपने ऐश्वर्य बता रहे हैं, दूसरे में भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनके भक्त उनके बारे में चर्चा करते हैं, तीसरे में भगवान उनको खुद बुद्धि योग प्रदान करते हैं, उस बुद्धि योग के प्रभाव से भगवान ज्ञान रूपी दीप से उनके अज्ञान को खत्म करते हैं। ये 4 भगवद्गीता के 4 श्लोक हैं। तो इसके बाद जो अगला सेक्शन आता है 12 नंबर श्लोक से, 12 नंबर श्लोक से हम देखते हैं कि अर्जुन अभी स्वीकार कर लेते हैं भगवान को, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जैसा अर्जुन स्वीकार करते हैं। तो अर्जुन ने बहुत समय से बोला नहीं, दूसरे अध्याय में 8वें अध्याय में अर्जुन ने बोला था, उसके बाद अर्जुन ने कुछ बोला नहीं, 9वां अध्याय अर्जुन ने कुछ नहीं बोला, अभी 10वें अध्याय में अर्जुन बोल रहे हैं और बोलते हैं कि भगवान आप जो बोल रहे हैं मैंने सब कुछ उसको स्वीकार कर लिया है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, मैं समझ गया हूँ कि आप ही परब्रह्म हैं, आप ही परम धाम मतलब सभी के आश्रय हैं और पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप ही इस संसार के मेन पुरुष हैं, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। आदि देव मतलब संसार आपसे प्रारंभ होता है, आपसे सब कुछ प्रारंभ हुआ है, अजम मतलब आप अजन्मा हैं, विभुम मतलब आप सबसे बड़े हैं। और अर्जुन ये नहीं बता रहे हैं कि कई लोग सोच सकते हैं कि अर्जुन कृष्ण के फ्रेंड हैं इसलिए उनकी प्रशंसा करने के लिए अर्जुन इस तरह से बोल रहे हैं, तो अर्जुन उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा नहीं कि केवल मैं ही ऐसा बोलता हूँ, मेरे अलावा बहुत सारे लोग इस तरह से बताते हैं। आहुस्त्वाम विषय सर्वे, सारे ऋषि इस तरह से बताते हैं, देवर्षि नारद इस तरह से बताते हैं, असित ऋषि असित जो हैं देवल हैं वेद व्यास हैं, ये सब भी आपके बारे में ये जो सच्चाई है ये बताते हैं और आज आप स्वयं भी मुझे ये बता रहे हैं। तो ये नहीं समझना चाहिए कि अर्जुन अपने मित्र को फ्लैटर कर रहे हैं, बटरिंग कर रहे हैं कि नहीं नहीं आप मेरे मित्र हो इसलिए मैं आपको भगवान बोलूँगा। नहीं, पहले के समय में ऐसे मन से कोई बात नहीं होती थी, जो भी बात होती थी वो अथॉरिटीज़ के द्वारा होती थी। तो अर्जुन इस प्रकार से भगवान को बता रहे हैं कि ऋषि देवर्षि नारद असित देवल व्यास ये सब आपके बारे में बताते हैं और आज आप स्वयं भी अपने बारे में इस तरह से मुझे बता रहे हैं। और सर्वम एतद्वितम मन्ये, आप जो मुझसे बोले हैं मैं वो सबको स्वीकार करता हूँ और मैं समझता हूँ कि आपको इस संसार में ना तो देवता समझ सकते हैं और ना दानव समझ सकते हैं, आपको आपको प्राप्त करना आपके बारे में जान पाना बहुत कठिन है, आपको कोई नहीं समझ सकता है। तो यहाँ से अर्जुन ने अभी सरेंडर चालू कर दिया, अर्जुन समर्पित होने लगे भगवान की शिक्षाओं के लिए। और इस समर्पण के बाद अर्जुन प्रश्न पूछेंगे भगवान के दिव्य विभूतियों के बारे में कि आज आपने मुझे जो विभूतियाँ बताई हैं अपने बारे में जो बताई उसको मैं स्वीकार करता हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि आपको आपके अलावा और कोई नहीं जान सकता, आप ही अपने आप को जानते हैं और आप जिसको जितना परसेंटेज कृपा करते हैं उतना ही वो आपको समझ सकता है। तो कोई व्यक्ति ऐसा क्लेम नहीं कर सकता कि वो आपको पूरी तरह से समझ गया है, आप जिसको समझाना चाहते हैं वो आपको समझ सकता है क्योंकि आप ही सभी के स्वामी हैं, सभी के स्तोत्र हैं। इसके बाद अर्जुन फिर प्रार्थना करते हैं कि मैं आपके दिव्य विभूतियों के बारे में जानना चाहता हूँ 16वें श्लोक में कि कृपा करके विस्तार से, भगवान ने बताया था ना कि 7वें श्लोक में बताया था इस तरह से कि जो मेरी विभूतियों के बारे में विस्तार से जानता है वो उसकी भक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है। तो अर्जुन वही बता रहे हैं, वक्तुम अर्हस्य शेषेण, कृपा करके मुझे विस्तार से अपनी विभूतियों के बारे में बताइए जिन विभूतियों के द्वारा आप इस संसार में, इस भौतिक संसार में पूरी तरह से व्याप्त हैं। तो ये अर्जुन की रिक्वेस्ट थी। और अगला एक और प्रश्न अर्जुन कर रहे हैं कि किस प्रकार से मैं जानूंगा कि मैं किस प्रकार से आपका चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। अभी भगवान को सरेंडर करने के बाद अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं शिष्य के समान कि कैसे मैं आपको समर्पण करूं और कैसे मैं आपके बारे में जानूं, किन किन रूपों में मैं आपको याद कर सकता हूं, मैं आपको कैसे सोच सकता हूं, आपके बारे में कैसे जान सकता हूं, किन किन रूपों में आपको मैं समझ सकता हूं। तो हम देख रहे हैं फ्लो, ये पहले भगवान ने बताया अपने कि मैं किस तरह से सभी वस्तुओं के ओरिजिन है, उसके बाद चतुर्श्लोक की गीता में भगवान इस तरह से बता रहे हैं कि वो उनके भक्तों के बीच का संबंध कैसा होता है, भगवान कैसे मदद करते हैं। उसके बाद अर्जुन अभी समर्पण करके भगवान से पूछ रहे हैं, भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताइए। और इस प्रकार से अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान बाकी जो भी पूरा अध्याय जो बचा हुआ है उसमें भगवान बताते हैं कि उनकी विभूतियाँ कौन कौन सी हैं, किस रूप में भगवान इस संसार में उपस्थित होते हैं। तो 19वें श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक भगवान की विभूतियों का वर्णन है और 42वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि मैं कितनी विभूतियां तुम्हें बताऊं क्योंकि ये संसार पूरा संसार ही मुझसे व्याप्त है, तो मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। केवल ये समझ सकते हो कि केवल एक अंश के द्वारा मैं इस पूरे संसार को नियंत्रित करता हूँ, पूरे संसार को मैनेज करता हूँ। और भगवान का विभूतियां बताने का स्टाइल भी बहुत अमेजिंग है। भगवान किस प्रकार से बता रहे हैं 19वें श्लोक से लेके कि भगवान एक ग्रुप लेते हैं और उस ग्रुप में जो सबसे बेस्ट व्यक्ति है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। इस प्रकार से भगवान इसको समझा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान यहाँ पे बताते हैं, आदित्या नाम अहम विष्णु, सारे आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। भगवान इस संसार में जो ग्रुप है, जैसे देवताओं का, दानवों का और मरीचि का, नक्षत्रों का, सबका एक एक ग्रुप बताते हैं, और बताते हैं कि उन सभी ग्रुप में भगवान जो है वो सबसे प्रोमिनेंट एस्पेक्ट हैं। तो उन सभी ग्रुप के जो बेस्ट मेंबर हैं वो भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से भगवान अपनी विभूतियों को बताते हैं। तो 19वें अध्याय में भगवान तैयार हो गए हैं कि ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हें अपनी विभूतियों को बताऊंगा, हंत ते कथयिष्यामि, मेरी दिव्य आत्म विभूतियों को बताऊंगा, और मैं तुम्हें सारी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरी विभूतियां अनलिमिटेड हैं, कोई अंत नहीं है उसका, परंतु जो इस संसार में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हैं उन विभूतियों को मैं बताऊंगा। तो इवन शुद्ध भक्त को भी भगवान की विभूतियां समझना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, क्योंकि अनलिमिटेड है, अनंत है, उसका कोई ओर छोर नहीं है। तो भगवान उसके में से जो जो प्रोमिनेंट विभूतियां हैं वो अर्जुन को बताते हैं। और सबसे पहले भगवान बताते हैं, अहम आत्मा गुड़ा केशा, मैं इस संसार का आत्मा हूँ, सर्वभूता सह स्थित, सभी लोगों के हृदय में मैं स्थित हूँ, मैं आदि हूँ मतलब बिगिनिंग हूँ, इस संसार का बिगिनिंग भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ, संसार के पहले भी मैं था, संसार में भी मैं हूँ, संसार के बाद भी मैं रहूँगा, इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। उसके बाद भगवान बताते हैं किस प्रकार से हर वस्तु में मैं व्याप्त हूँ। आदित्यों में मैं, आदित्य मतलब अदिति के पुत्र, देवता जो हैं, तो अदिति के पुत्रों में मैं विष्णु हूँ। आप सभी को पता होगा आदित्य में भगवान वामन देव के रूप में अवतार लिए थे, अदिति के पुत्र के रूप में, इसलिए भगवान का नाम है उपेंद्र, उपेंद्र मतलब इंद्र के छोटे भाई, क्योंकि अदिति के पुत्र के रूप में भगवान ने अवतार लिया था। तो सभी आदित्यों में भगवान वामन देव हैं, सभी आदित्यों में भगवान वामन देव हैं, सभी प्रकाशों में भगवान सूर्य हैं, ज्योतिषाम रवि अंशुमान, रवि मतलब सूर्य, जितने भी प्रकाशमयी पदार्थ हैं संसार में उन सभी में भगवान सूर्य देव हैं। और मरीच मत मरुतामस्मि, मरुत मरुत आप शायद जानते होंगे कुछ लोग, मरुत एक बार श्रीमद भागवतम में ये स्टोरी आता है कि ब्रह्मा दिति के कुछ पुत्र थे उनके गर्भ के अंदर, तो जब उनके पुत्र थे तो इंद्र को ऐसा लगा कि दिति के ये पुत्र, शायद दिति का जो पुत्र पैदा होगा वो मुझे मारेंगे, तो इंद्र दिति की सेवा करने लगे और समय देख के दिति के गर्भ के अंदर घुस के उन्होंने उनके पुत्रों को मार दिया, उनका जो गर्भ जो था उसको काट दिया 49 भागों में। तो वास्तविकता में उसमें से मरुत नाम से देवता निकले और वो सारे देवता इंद्र के ही फॉलोअर थे, इंद्र के शत्रु नहीं थे। तो इस प्रकार मरुत में मरीचि भगवान, मरीचि जो है भगवान के प्रतिनिधि हैं, और नक्षत्रों में चंद्रमा भगवान के प्रतिनिधि हैं। चंद्रमा एक नक्षत्र है और आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। वैदिक सिद्धांतों में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत को नहीं माना जाता है, सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है और दूसरे नक्षत्र भी प्रकाशित हैं। तो बहुत सारे तारे, जो भौतिक विज्ञान बताता है कि बहुत सारे तारे सूरज हैं, आध्यात्मिक विज्ञान उसको नहीं मानता है, हम मानते हैं कि ब्रह्मांड में केवल एक ही सूरज है और बाकी सभी तारे जो हैं वो नक्षत्र हैं जो कि सूरज की रोशनी से चलते हैं। इसके बाद भगवान बता रहे हैं कि सारे वेदों में मैं साम वेद हूँ, चतुर्थ वेदों में भगवान साम वेद हैं, सारे देवताओं में मैं वसु हूँ, अष्ट वसु जो होते हैं, तो सारे देवताओं में भगवान वसु को प्रतिनिधित्व करते हैं, सारी इंद्रियों में मन हूँ क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है, हम जानते हैं कि मन इंद्रियों का राजा है, अगर मन को नियंत्रित करते हैं तो इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं, इसलिए भगवान बता रहे हैं कि सभी इंद्रियों में मैं मन हूँ, और भूतों में, जीवों के अंदर में चेतना हूँ, चेतना शक्ति, जीवन शक्ति मैं हूँ, इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। और रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, 11 रुद्र जो हैं उसमें मैं हूँ शंकर, भगवान शिव हूँ मैं रुद्रों के अंदर, केवल एक ही रुद्र नहीं होते, 11 रुद्र होते हैं, उसमें से सबसे प्रोमिनेंट रुद्र जो है वो भगवान शिव हैं, और वो रुद्र भगवान के प्रतिनिधि हैं। वित्तेषु यक्ष रक्षसाम, यक्षों तथा राक्षसों में मैं संपत्ति का देवता, संपत्ति का देवता कौन कहलाते हैं, ट्रेजरर, इस संसार के ट्रेजरर हैं कुबेर, तो संपत्ति के देवताओं, यक्षों और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ। वसु नाम पावकश्चास्मि, वसुओं में मैं अग्नि हूँ, मेरु पर्वत सारे शिखरों में मैं मेरु पर्वत हूँ, सभी पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूँ। सामान्यतः हमें लगता है कि ये हिमालय सबसे बड़ा पर्वत है, परंतु भगवद गीता बताता है कि पर्वतों में सबसे शिरोमणि है मेरु पर्वत, सुमेरु या मेरु पर्वत उसको बोला जाता है, वो सबसे बड़ा पर्वत है। और इसके बाद भगवान बता रहे हैं पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, संसार में जितने भी पुरोहित हैं मतलब ब्राह्मण हैं उन सभी में मैं बृहस्पति हूँ, बृहस्पति सबसे फेमस ब्राह्मण है। सेनानी इमान अहम स्कंद सरसामस्मि भारत, सभी सेनापतियों में मैं कार्तिकेय हूँ, देवताओं की सेना के सेनापति कार्तिकेय हैं जो कि संसार के बेस्ट सेनापति हैं। और सरसामस्मि सागर, सभी जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। इंद्र स्वर्ग के प्रमुख देवता हैं और स्वर्ग के राजा हैं, जिस लोक में उनका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। बृहस्पति इंद्र के पुरोहित हैं और चूंकि इंद्र सभी के प्रधान है इसलिए बृहस्पति सभी पुरोहितों में प्रधान है, संसार के सभी पंडितों में या पुरोहितों में बृहस्पति सबसे मुख्य माने जाते हैं। सभी सेनानियों में कार्तिकेय सबसे मुक्त माने जाते हैं, सभी जलाशयों में समुद्र सबसे महान माना जाता है। इसके बाद महर्षि नाम भृगुरहम, सभी महर्षियों में मैं भृगु हूँ, भृगु मुनि, भृगु मुनि बहुत फेमस ऋषि हैं जिन्होंने एक बार टेस्ट किया था कि भगवान विष्णु शिव और ब्रह्मा में कौन बड़े हैं, तो सभी महर्षियों में मैं भृगु हूँ और गिरामस्म्येकम अक्षरम, वाणियों में मैं ओमकार हूँ। कल या परसों 8 अध्याय या 9वें अध्याय में हमने डिस्कस किया था कि ओमकार और हरे कृष्ण महामंत्र समान है, अपितु हरे कृष्ण महामंत्र ओमकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ओमकार भगवान का वाणी प्रेजेंटेशन है जबकि हरे कृष्ण महामंत्र भगवान स्वयं है, भगवान का पर्सनल रूप है। तो एक तरह से दोनों समान है परंतु हरे कृष्ण महामंत्र करने से दिव्य प्रेम की प्राप्ति होती है। तो वाणियों में मैं ओमकार हूँ, यज्ञों में मैं नाम का यज्ञ हूँ, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, इसलिए भगवान के नाम को जब हम जप कर रहे हैं दैट मीन्स हम संसार का सबसे बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। हम लोग कई बार बताते हैं ना कि हरि नाम यज्ञ मतलब संसार का सबसे बड़ा यज्ञ है, उसका ये प्रूफ है कि यज्ञा नाम जप यज्ञ उसमें सारे यज्ञों में मैं नाम का जप हूँ। स्थावरा नाम हिमालय, सभी स्थिर वस्तुओं में मैं हिमालय हूँ। अभी हिमालय सबसे बड़ा पर्वत भले ही नहीं है, सबसे बड़े पर्वत में भगवान ने बोला था मैं मेरु हूँ, परंतु मेरु कई बार चलायमान होता है, एक जगह रुकता नहीं है, परंतु हिमालय कभी भी चला नहीं, हमेशा एक जगह पर रहा, इसलिए स्थिर रहने वाली वस्तुओं में हिमालय का नाम माना जाता है। इसके बाद सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ का वृक्ष हूँ और देवर्षियों में मैं नारद हूँ, सभी देवर्षियों में भगवान नारद मुनि के रूप में है। बरगद का वृक्ष, सबसे सभी वृक्षों में मैं बरगद का वृक्ष हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ, घोड़ों में उच्चस्वा अर्जुन इंद्र का जो घोड़ा था उच्चस्वा, अमृतों में मैं समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ हूँ, उच्चस्वा जो था वो समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था, जब राक्षस और देवता समुद्र मंथन कर रहे थे तब तो उच्चस्वा नाम का घोड़ा उत्पन्न हुआ था। और हाथियों में मैं ऐरावत हाथी हूँ, मनुष्यों में मैं राजा हूँ, हथियारों में मैं इंद्र का जो वज्र रूप है वो मैं हूँ, गायों में मैं सुर भी गाय हूँ, और संतति मतलब जन्म देने वाले कारणों में मैं प्रेम का देवता कामदेव हूँ, रति और कामदेव जो जन्म देने के लिए उत्तरदायी हैं मैं हूँ, और सभी सर्पों में मैं वासुकी हूँ, वासुकी जो सर्प लोक के राजा हैं, नाक लोक के राजा हैं, उनमें वासुकी भगवान के प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी नागों में मैं अनंत नाग हूँ, यहाँ पे सर्प और नाग में अंतर है, सर्प मतलब सामान्य सर्प और नाग शक्तिशाली होते हैं, नाग जो है वो सर्प से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो समस्त नागों में मैं अनंत हूँ, अनंत शेष मतलब शेष नाग, शेष नाग भगवान के प्रतिनिधि हैं। सभी जलचरों में मैं वरुण वरुण देव हैं, वरुण एक्चुअली समुद्र के देवता माने जाते हैं, जल के देवता माने जाते हैं, तो सभी जलचरों में मैं वरुण देव हूँ। पितरों में मैं अर्यमा हूँ, पितृलोक के जो अधिष्ठाता है अर्यमा देव वो भगवान को प्रतिनिधि करते हैं। सभी नियमों के निर्वाहकों में मैं यमराज हूँ, सभी दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ और पक्षियों में गरुण हूँ। गरुण जो है वो द्वितीय और अदिति के पुत्र में से, अदिति के पुत्र जो थे वो देवता हैं आदित्य, और दिति के पुत्र जो है वो दैत्य हैं, नास्तिक हैं। तो प्रहलाद दैत्य कुल में थे, परंतु तब भी वो भगवान के परम भक्त थे, क्योंकि उनको नारद मुनि की कृपा प्राप्त हुई थी। पशुओं में सबसे शक्तिशाली सिंह होते हैं, इसलिए सिंह जो है भगवान के प्रतिनिधि हैं। और सारे पक्षियों में भगवान गरुड़ जो है वो भगवान विष्णु के वाहक हैं, इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह पवित्र करने वायु में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम, राम जो है वो दुनिया के सबसे बड़े शस्त्रधारी माने जाते हैं। मछलियों में मैं मगर हूँ, नदियों में मैं गंगा गंगा नदी हूँ। मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। समस्त विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या, अध्यात्म विद्या मतलब ऐसी विद्या जो हमें भगवत भक्ति के बारे में बताती है, वो भगवान है। अक्षरों को मैं अकार हूँ, अकार मतलब आ आ इ ई, ये जो प्रारंभ होता है ये आ से चालू होता है, तो जहाँ से गिनती चालू होती है वो भगवान बता रहे हैं कि मैं उसका प्रतिनिधि हूँ। समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ, द्वंद्व समास मतलब जैसे राम कृष्ण, सुख दुख हानि लाभ, ये सब द्वंद्व समास, समासों में प्रतिनिधित्व, भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। और खत्म करने वालों में, विनाश करने वालों में मैं काल हूँ, इस तरह से भगवान बता रहे हैं। और सृष्टि करने वालों में मैं ब्रह्मा हूँ, तो विनाश करने वालों में मैं काल हूँ, सृष्टि करने वालों में मैं ब्रह्मा हूँ। मैं मृत्यु भी हूँ जो सब कुछ छुड़ा लेता है। प्रभुपाद कई बार बताते थे कि जो लोग भक्ति करते हैं उनके पास भगवान मृत्यु के समय भगवत रूप में आते हैं, अपने रूप में आते हैं, उनको लेके जाते हैं अपने धाम में। और जो लोग भक्ति नहीं करते हैं उनको भगवान मृत्यु के रूप में लेके जाते हैं, मृत्यु के समय आके भगवान उनसे सब कुछ हरण कर लेते हैं, सब कुछ उनका छीन लेते हैं। तो मैं मृत्यु हूँ, मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्रियों के लक्षण भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि स्त्रियों में कौन कौन से प्रामाणिक लक्षण होना चाहिए, ये भगवान यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। सात ऐश्वर्य का वर्णन है, ये सात ऐश्वर्य का वर्णन इसमें आता है। कौन कौन से सात ऐश्वर्य हैं? ये सात ऐश्वर्य स्त्रीवाचक हैं। कीर्ति मतलब यश, श्री मतलब सुंदरता, वाक मतलब वो वाणी की कोमलता, स्मृति मतलब दिमाग, मेधा मेधा मतलब याद रखने की क्षमता, धृति धृति का मतलब होता है दृढ़ता, दृढ़ता जीवन में दृढ़ता रहना, और क्षमा मतलब धैर्य। तो ये स्त्रियों में ये छह क्वालिटी होना चाहिए, अगर ये छह क्वालिटी स्त्रियों में होती है तो भगवान उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये छह क्वालिटीज भगवान की प्रतिनिधित्व है, स्त्रीवाचक हैं ये क्वालिटीज। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी गुण होते हैं तो वो यशस्वी कहलाता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रखता है तो उत्तम स्मृति होती है। ग्रंथों को समझ के आवश्यकता पड़ने पर अप्लाई करने को मेधा या बुद्धि कहलाते हैं। और अगर कोई पूरी तरह से योग्य होके विनम्र है तो उसको क्षमा या ऐश्वर्य विनम्रता कहलाते हैं। तो ये सारे गुण भगवान के प्रतिनिधि हैं, सात गुण जो हैं ये भगवान के प्रतिनिधि हैं। इसके बाद सामवेद के गीतों में मैं बृहत साम हूँ। वेदों में अलग अलग गीत होते हैं, तो सामवेद की एक मुख्य प्रार्थना है, उसमें से भगवान बता रहे हैं कि मैं बृहत साम हूँ। सभी छंदों में मैं गायत्री हूँ। महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ। मार्गशीर्ष मतलब अगहन का महीना, कार्तिक के बाद जो महीना आता है वो अगहन का महीना होता है। कार्तिक का महीना भगवान श्रीमती राधा रानी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हुई थी, और मार्गशीर्ष भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु मैं हूँ। सभी मासों में मार्गशीर्ष का महीना सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस माह में खेती से अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मार्गशीर्ष के महीने में खेती का अन्न घर आता है, इसलिए लोग उसमें खुश होते हैं, इसलिए ये महीना सबसे अच्छा माना जाता है। वसंत ऋतु ऐसी है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि यह ना तो बहुत गर्म होती है ना सर्द होती है, और इस ऋतु में वृक्षों में फूल आते हैं। वसंत ऋतु में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं, इसलिए इस ऋतु को सबसे अच्छी ऋतु माना जाता है। इसके बाद छलियों में मैं जुआ हूँ, तेजस्वियों में तेज हूँ, तेज मतलब शक्ति, मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। वंशी मतलब यदुवंशियों में मैं भगवान वासुदेव हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, मुनियों में मैं वेद व्यास हूँ, और कवियों में मैं उसना कवि। उसना कवि का मतलब है शुक्राचार्य, देव असुरों के जो आचार्य थे शुक्राचार्य, वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। अराजकता का दमन करने वाले में मैं दंड हूँ, दंडो दम यता चास्मि। क्षत्रिय लोग कई बार समाज में जो गंदी वृत्तियाँ फैलती हैं उसको खत्म करने के लिए दंड देते हैं लोगों को, तो वो दंड भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। और जो विजय के आकांक्षी हूँ हैं उसमें मैं नीति हूँ, नीति मतलब मोरालिटी, नीति के जो सिद्धांत हैं वो भगवान के द्वारा प्रकट होते हैं, तो वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। और रहस्यों में मैं मौन हूँ, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। मौन रखना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, सुनने सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम किसी से सुनते हैं और अगर हम खुद मौन नहीं रहते हैं तो हम उसको नहीं समझ पाते हैं। इसी तरह से ध्यान करते समय मौन रहना बहुत आवश्यक है, सोचते समय मौन रहना आवश्यक है, तो ये मौन रहने से लोग जल्दी उन्नति करते हैं, इसलिए मौन रहना भगवान के प्रतिनिधि हैं। ज्ञानम ज्ञानवतामहम्, सारे ज्ञानों में उसमें अध्यात्म का ज्ञान हूँ मैं। समस्त सृष्टि का जनक हूँ, बीज हूँ, ऐसे चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो यहाँ पे भगवान समराइज करने वाले हैं कि सब सारी सृष्टि मुझसे निकलती है, चर अचर मतलब चलने वाले और नहीं चलने वाले कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके, मैं सभी का अस्तित्व हूँ और मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। हे परंतप नान्तोस्ति मम दिव्यानाम, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है, कितना मैं सुनाऊंगा, इनका कोई अंत नहीं है। तो मैंने तुम्हें प्रोमिनेंट सुनाया, मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो मेरी अनंत भूतियों का संकेत मात्र है, जो मेरी अनलिमिटेड ऑपुलेंस है उसमें से कुछ मैंने तुम्हें, कुछ परसेंटेज मैंने तुम्हें सुनाया है। इस तरह से भगवान बता रहे हैं, हे परंतप मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है, मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है, केवल मैंने थोड़ा इंडिकेशन दिया है कि ये सब कुछ है, अल्टीमेटली अगर मैं बताना बताऊंगा तो अनलिमिटेड है, वो कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें थोड़ा संकेत दिया है, और इन जनरल तुम ये समझ लो कि संसार में तुम जो भी विभूति देखते हो, जो भी सौंदर्य देखते हो, जो भी तेजस तेज देखते हो और जो भी सृष्टि देखते हो, वो सब मेरे एक अंश से निकल के आता है। एक अंश मतलब भगवान के एक अंश हैं, भगवान कृष्ण के एक अंश जो हैं कार्णोदकशायी विष्णु महाविष्णु, और महाविष्णु से पूरा संसार निकल के आता है। तो भगवान बताते हैं मेरे एक अंश से संसार की जितनी विभूति है, जितना सत्व है, सौंदर्य है, जितना तेज है, वो सब कुछ मेरे एक विभूति से निकल के आता है, इतना तुम जान लो, क्योंकि पूरा बताना पॉसिबल नहीं। इसलिए जो जहाँ भी तुम्हें संसार में कोई विभूति दिखे या कोई ऐश्वर्य दिखे, वो सब मेरा मेरा प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह से भगवान ने टोटल 82 क्वालिटीज यहाँ पे बताई हैं, 82 जो लोग हैं वो बताए हैं, उसके अंदर भगवान ने अपना प्रतिनिधित्व बताया है, तो टोटल 82 विभूतियाँ भगवान यहाँ पे बताते हैं। और लास्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि इतने सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है, तुम केवल ये जान लो कि मैं अपने एक अंश से ब्रह्मांड को धारण करता हूँ, अनंत शेष के रूप में पूरे ब्रह्मांड को भगवान धारण करते हैं, गर्भोदकशायी विष्णु महाविष्णु क्षीरोदकशायी विष्णु के द्वारा ब्रह्मांड को चलाते हैं, तो ये सब भगवान के अंश हैं, और भगवान बता रहे केवल एक अंश से मैं इस पूरे संसार को धारण कर रहा हूँ। एक ऐसी धार्मिक संस्था है जो यह निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान की प्राप्ति होगी, किंतु यहाँ पे देवताओं की पूजा के बारे में नहीं बताया गया है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा और शिव जो बहुत बड़े बड़े देवता हैं वो भी भगवान की विभूतियां हैं, तो भगवान से ऊपर कोई नहीं है, भगवान के समान भी कोई नहीं है। तो कोई अगर ध्यान पूर्वक भगवान की विभूतियों को देखता है, उनका अध्ययन करता है, तो भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करता है, भगवान के प्रति भक्ति को बढ़ाता है। इसलिए शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मन को एकाग्र करते हैं, और सारे संसार के पालन भगवान इस प्रकार से अपनी विभूतियों के द्वारा कर रहे हैं। तो ये अध्याय इस तरह से खत्म होता है। इस अध्याय में जस्ट एक शॉर्ट रिकैप कर सकते हैं, सबसे पहले हमने देखा था अर्जुन भगवान किस प्रकार से संसार के ओरिजिन हैं, और दूसरे दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया था कि उनको देवता और दानव नहीं जानते हैं, जो उनको जान जाता है वो इल्यूजन से बच जाता है और सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और फिर भगवान ने बताया संसार के जितने भी गुण हैं वो सारे के सारे गुण मुझसे निकल के आते हैं, और जो ये विभूतियाँ जानते हैं वो मुझसे जुड़ जाते हैं भक्ति के द्वारा। इसके बाद भगवान ने 8 से लेकर 11 तक चतुर्श्लोक की गीता बताया, जिसमें भगवान ने अपने बारे में बताया, अपने भक्तों के बारे में बताया और कैसे वो भक्तों के हृदय में जाके अज्ञान का विनाश करते हैं। उसके बाद 12 से लेकर 18 तक अर्जुन ने भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया, वो बोला कि आप जो बता रहे हैं वो मैं सब मान गया हूँ, अभी आप अपनी विभूतियों के बारे में मुझे बताइए। और फिर 19 से लेकर 42 तक भगवान अपनी विभूतियाँ बता रहे हैं, और लास्ट में भगवान बता रहे हैं कि मैं केवल अपने एक अंश से पूरे संसार को धारण करता हूँ। तो इस तरह से ये अध्याय कंप्लीट होता है। अभी 11वें अध्याय में अर्जुन जो है वो भगवान के विराट रूप के दर्शन की इच्छा करेंगे, क्योंकि विभूतियाँ जानने के बाद अर्जुन उसको उस रूप को देखना चाहते हैं जो कि इतना महान है, वेदों में दिया गया है। तो अर्जुन भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान मुझे उस रूप का दर्शन दीजिए। तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। 11वां अध्याय पढ़ के आएंगे तो कल हम उसको डिस्कस करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है और इस तरह से हम एक एक अध्याय कवर करने की कोशिश करेंगे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप की जय।